रात का क्लास चल रहा था, अट्ठाईस अक्टूबर 1966 शुक्रवार को। पहले पेज की मध्यांक में बात चल रही थी कि भगवान वाच भी एक दफे होगा, सारे कल्प में एक बार, घड़ी घड़ी तो अनुभव भगवान वाच नहीं होगा ना। कि 36 में भी भगवान आया, 1947 में भी भगवान आया, फिर 1976 में भी भगवान आया, और भगवान आया परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान बाप आते हैं तो दत्त से राजधानी स्थापन कर देते हैं, क्या कहने है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। तो भगवान वाच हुआ या नहीं हुआ, क्या कहें, भगवान कब आता है, गाया हुआ है महाशिवरात्रि अर्थात बड़े से बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें सारी दुनिया, सारे मनुष्य मात्र घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं। पांच सौ सात सौ करोड़ की दुनिया ही नहीं, सिर्फ बाहर की दुनिया ही नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया के बेसिक के स्टूडेंट्स और एडवांस नॉलेज लेने वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। कौन सा अज्ञान अंधकार, बाप को भूल जाते हैं, ऐसा अज्ञान अंधकार जिसमें माया सबको अंधा बना देती है। तो कब होती है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि होती तब है जबकि बोला हुआ है ब्रह्मा महावाक्य, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। तो कब से कहे 40 वर्ष?
46
जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया 1976 है। जो मुरली के अनुसार लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होता है वो नारायण वाली आत्मा कहो, राम वाली आत्मा कहो, प्रजापिता कहो या शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा कहो, सारे मनुष्य जगत का पिता '76 में तमो प्रधान अपने ही रूप को नहीं जानता था। फिर 76 से अपने आत्मा के पार्ट की प्रत्यक्षता हुई। मना दिव्य जन्म हुआ। ज्ञान गर्भ से बाहर आया और तब से लेकर 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2017, क्योंकि 1977 में संपूर्णता वर्ष मनाया। तो 40 वर्ष जब पूरे होते हैं सुप्रीम सोल बाप शिव आत्माओं का बाप जो अल्लाह अव्वलीन कहा जाता है, अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने के आते हैं। वो धर्म की स्थापना करने के साथ साथ राजधानी की भी दत्त से स्थापना कर देते। कितनी बड़ी राजधानी होगी? नई दुनिया की राजधानी छोटी होगी या बड़ी होगी? कितनी छोटी होगी? ऐसी छोटी राजधानी होगी जिसमें सारे ही भांति ₹100% संपन्न स्टेज वाले होने चाहिए। अगर राजधानी का फाउंडेशन ही कमजोर होगा तो बाद वाली पीढ़ियां तो और ही कमजोर होंगी। जबकि सतयुग के पहले जन्म में जो राधा कृष्ण का जन्म होता है वो 16 कला संपूर्ण होना चाहिए, चौथाई कला कम नहीं। तो वो टाइम है संबत 1111 जब नई राजधानी का संपन्न फाउंडेशन पड़ता है तो कहेंगे कि 100 वर्ष के संगम युग में भी पुरुषोत्तम का प्रत्यक्षता वर्ष संपूर्ण पुरुषोत्तम 100% पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम इस सृष्टि पर भगवान बाप शिव आकर के प्रत्यक्ष करते हैं और जब भगवान बाप आकर के प्रत्यक्ष करते हैं तो स्वयं भी प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहो शिव जयंती कहो वो संगम युग पर ही होता है। संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी होती है। पुरुषोत्तम दिन होता है, पुरुषोत्तम वर्ष होता है। तो वो घड़ी कौन से सन में होगी? क्योंकि संगम माना ही कलयुग का अंत और सतयुग का अंत। 1936 में कलयुग का अंत तो है, सतयुग की आदि तो नहीं है। ७६ में भी सतयुग की आदि नहीं है। आदि कहेंगे ही तब जब भगवान गॉडफादर जो अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला है वो प्रैक्टिकल में इस शक्ति पर प्रत्यक्ष होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जो देखेगा वो कहेगा बच्चे का जन्म हुआ, जो सुनेगा उसकी आवाज तो कहेगा बच्चे का जन्म हुआ। ऐसे बाप कहते हैं कि भगवान जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है तो जो देखेगा इन आंखों से वो कहेगा मेरा बाप आ गया, जो सुनेगा इन कानों से वो कहेगा मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं का बाप। उस घड़ी के बाद फिर 5000 वर्ष तक भगवान वाच नहीं होता है। सौ वर्ष के संगम में बार बार भगवान वाच नहीं होता है। भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं ना, पढ़ाए करके मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ३६ से किसी को देवता बनाया या ४७ से किसी को देवता बनाया या ७६ से किसी को देवता बनाया। بنایا؟
نہیں بنایا.
بس ایک ہی بات سمجھے نا, اور یہ جان دے ہو نا کہ کوئی بھی منشی کو اس سستی پر دیوتا نہیں بنا سکتا ہے. کوئی بھی سکھ دھام کا مالک و شانتی دھام کا مالک بنائے نہیں سکتے, کیونکہ اس شکتی پر ہر ایک چیز ایک ہی بار پرتیکش ہوتی ہے اس روپ میں. دیکھو ابھی دیکھو جو کچھ بھی ہوتا ہے, ابھی بیٹھا ہوا ہے یہ رادھا کرشن, سانکٹ کی بات بتائی. رادھا کرشن راشٹرپتی کے پد پر بیٹھا ہوا تھا نا, تو بس رادھا کرشن ایک ہی بار بیٹھتا ہے کلپ میں, جیسے 66 میں رادھا کرشن راشٹرپتی کی گدی پر بیٹھا, تو بس 5000 ورس کے بعد ایک ہی بار پھر سے رادھا کرشن گدی پر بیٹھے گا, پریسیڈنٹ بنیں گے. بس پھر 5000 ورس میں کبھی بھی پریسیڈنٹ نہیں بنے گا. جو بھی پھر یہ ہے سبھی کچھ جو دیکھنے میں آتا ہے رادھا کرشن کے راجیہ میں, جو کچھ بھی سین سینری ہے ساری دنیا کی, وہ سین سینری پھر 5000 ورس کے بعد ہی دیکھنے میں آئے گی. تو ڈراما کو بھی تو سمجھ جانا ہے نا بچی. اچھا اگر بڈھی بچیاں اتنا نہیں دھارن کر سکتی ہیں تو ان کو صرف کہا جاتا ہے, تین باتیں تو یاد ہیں, شانتی دھام کی ہم آتمائیں رہنے والی ہیں, پھر شانتی دھام سے ہم آتے ہیں سکھ دھام میں سکھ بھوگنے کے لیے. پیچھے جو آدھا کلپ کی دنیا رہتی ہے وہ آدھی دنیا جب پرانی ہوتی ہے تب آتے ہیں. پھر تو راون راج شروع ہو جاتا ہے, 28/10/66 کی وانی کا دوسرا پیج تیسری لائن. اب پھر پیچھے پیچھے تھوڑا تھوڑا کر کے بیکاری بنتے جاتے ہیں دواپر کی یاد سے. پیچھے تو بہت بیکاری بنتے بنتے بہت دکھی ہو جاتے, پیچھے اس کو کہا جاتا ہے دکھ دھام. جب دکھ دھام کی آیو پوری ہوتی ہے تب باپ بولتے ہیں کہ مجھے آنا پڑتا ہے फिर तुमको सुख धाम में ले जाने के लिए। सीधी बात समझाते हैं, ये बात समझने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है ना? ये बातें अपने से बैठ कर अंदर अंदर करनी चाहिए। हम आत्माएं असल में शांति धाम की रहने वाली हैं। तो देखो, तुम जिसको बाप बैठ करके पढ़ाते, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। जो ज्ञान बाप बैठ करके तुमको पढ़ाते, ये ज्ञान दूसरों के लिए नहीं है। नहीं, जो बाप के सन्मुख आएगा उनके लिए, जो बाबा के पास आएगा उनके लिए है, जो आएगा वो ही आकर के बाप से वर्षा पाएगा। और वर्षा कहाँ का पाएगा? बाप से स्वर्ग का वर्षा पाएगा। जितना पढ़ेगा, जितना पढ़ाएगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। तो अभी समझे न बच्चे, क्योंकि सतयुग और त्रेता, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये राजधानी स्थापन हो रही है। इस राजधानी में कोई लाखों नहीं होंगे, क्या राधा कृष्ण की राजधानी में कितने होंगे? हैं? 9 लाख होंगे। लेकिन बाप जो आकर के राजधानी स्थापन करते हैं, उसमें लाखों होंगे? हैं? लाखों नहीं होंगे, कितने होंगे? हैं? 8 होंगे। और ये ज्ञान करोड़ों मनुष्य आकर के बाप से सीखेंगे, कुछ न कुछ आकर के समझेंगे। किंतु समझने वाले कोई एक थोड़े ही है। अभी तुमने तो 108 की माला को जाना है, तो 108 से फिर जब जाति तैयार हो जाएंगे ना, तो फिर और 108 आगे बढ़ती जाएंगे। माना 108 की राजधानी नहीं होगी, और जो धर्म वाले हैं उनकी भी तो मालाएं तैयार होंगी ना। वो ये मद्रास की तरफ, वो ये इस तरफ में फैलाने, सात तरफ में तुमको जाना होगा। और सब तरफ तुमको जा करके समझाना होगा, फिर अखबारों में भी पड़ेगा, जहां तहां होंगे, जो भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, तो भी ये जो अखबारों में पड़ेगा ना, और ये जो अखबार के पत्रे निकलेंगे, अखबारों में छपेंगे, चित्र भी छपेंगे, तो वहां बैठे भी ज्ञान ले लेंगे। कौन से चित्र? ये लिखा हुआ है बाप को याद करना है, क्योंकि गीता को तो सात धर्म वाले जानते ही है ना। सारी दुनिया में गीता का प्रचार है और गीता में ये दो अक्षर हैं, मनमना बाबा मद्यादी बाबा, यानी बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जैसे खाद वाला सोना तेज अग्नि में डाला जाता है तो खाद वाला रहता है या पवित्र हो जाता है? पावन सोना हो जाता है। तो तुम भी इस योगाग्नि में पावन हो जाएंगे। पतित पावन गाया हुआ है ना, पावन बन जाएगा और फिर पावन दुनिया में आ जाएगा। तुम लिखते भी हो, ये सभी बातें लिखते हो, तो ये जो लिखत अखबारों में पड़ेगी ना, उस अखबारों की लिखत से भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जहां जहां भी दुनिया में दूसरे देशों में बैठे होंगे, जहां भी होंगे, क्योंकि यहाँ माउंट आबू में तो आकर के सब नहीं पढ़ेंगी ना बच्ची, भगवान की पढ़ाई, क्योंकि भगवान की पढ़ाई जिसे ज्ञान कहा जाता है वो नहीं पढ़ेंगे तो सदगति होगी है? सदगति मनुष्य मात्र की भी होगी या थोड़ों की होगी? मनुष्य मात्र की सदगति हो तो अखबार से भी बहुत ही समझ करके पावन बनेंगे, क्योंकि ये ज्ञान तो बिल्कुल समझ में सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और मेरे सिवाय कोई को याद न करो, ऐसी तेज योगाग्नि हो जिसमें एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद न हो। मुझे याद करो और अपने वर्ष को याद करो, बस। तो ये तो बहुत सच्चे अक्षर है ना बच्चे, क्योंकि बाप एक है और वो ही पतित पावन है। कौन एक है? एक माने एक बिंदु, एक बिंदु तो पतित पावन नहीं है। एक बिंदु बाप जो आत्माओं का बाप है वो आकर के पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं या निवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। तो एक होगा या दो आत्माएं होंगी? बाप भी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं तो बाप एक है, और जब आते हैं तो किस में हारेंगे? पहले पहले किसके संग में आवेंगे? बाप भी जब बाप बनता है दुनिया में तो पहले पहले किसके संग में आता है? माँ के संग में आता है। तो ये भी आत्माओं का बाप है। जब इस दुनिया में आते हैं तो परम ब्रह्म में आते हैं। मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो जो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, फिर मैं जिसमें पहले पहले आता हूँ उसे कहा जाता है परम ब्रह्म। तो वो एक ही बाप है और वो एक पतित पावन है। उसमें दो आत्माएं हैं, एक में एक पतित और दूसरा एवर प्योर सदा पावन। पतित आत्मा कौन? प्रजापिता, सारी मनुष्य मात्र की प्रजा और मनुष्य मात्र का पिता। पतित उस सब पतित में एवर प्योर बाप प्रवेश करते हैं। कोई पतित पावन है और उसी से ही वर्षा मिलता है, जिसको कहा जाता है गायन है पतित पावन सीता। तुम सब क्या हो? सीताएं हो। सीताओं की क्या क्वालिफिकेशन होती है? पतित हैं या पावन है? तुम सब सीताएं रावण राज्य में पतित हो और पावन बनाने वाला एक राम है। तो गाया जाता है पतित पावन सीताराम। तो जिनको वर्षा मिला हुआ है वो तो फिर से जरूर लेंगे। तो जो भी वर्षा लेने वाले हैं, पतित से पावन बनने वाले हैं, वो सब कोई यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं है, सारी दुनिया में बिखरे पड़े हैं, सब पतित हैं। उन सब पतितों को आकर के बाप पावन बनाते हैं। तो देखो बड़ी बड़ी विलायतों में पाकिस्तान में देखो कितने हैं, ढेर के ढेर हैं। लंदन में कितने हैं? ढेर के ढेर हैं। और बहुत जगहों में है। ये सभी अखबार में पढ़ेंगे, नहीं तो ज्ञान लिए बगैर कैसे पति से पावन बनेंगे? यहाँ माउंट आबू में आकर के सब ज्ञान लेंगे 500-700 करोड़ लेंगे? नहीं ले सकते। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे इतने 500-700 करोड़ मनुष्य पतित से पावन बने। पर अभी टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है। कब की मुरली है? 66 की है। तो ये सभी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे और जो देरी से आएंगे ये तो तुम समझते हो, कि बरोबर देरी से भी बहुत आवेंगे, फिर उनको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पिछाड़ी में जो जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अपनी प्रजा में आ जाएंगे। स्वर्ग में तो जरूर आवेंगे ना बच्चे, क्योंकि स्वर्ग कहो जीवन मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति में या स्वर्ग में तो सुख ही होता है या दुख भी होता है। तो जो आत्माएं एक जन्म लेने वाली होंगी, कलयुग के अंत में भी आवेंगी, तो एक जन्म का स्वर्ग भोगेंगी या नहीं भोगेंगी? जीवन मुक्ति जरूर भोगेंगी। जहां उस जन्म में उनको सुख ही सुख महसूस होगा, दुख महसूस नहीं होगा। इसलिए गाया जाता है कि ज्ञान से ही सदगति होती है, तो वो ईश्वर का ज्ञान 500-700 करोड़ को भी मिलेगा, या कोई ऐसा मनुष्य होगा, ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको ये ईश्वरीय ज्ञान न मिले? है, सबको ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा। यहां इस दुनिया में तो बहुत दुख है, तो देखो वो आत्माएं जिनको ईश्वर का ज्ञान मिलेगा वो शांति धाम, फिर शांति धाम से सुख धाम, और सुख धाम से दुख धाम में जरूर आवेंगे। तो देखो ये तो बना बनाया ड्रामा है। जितने भी स्वर्गवासी बनने वाले हैं वो जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। इसमें ऐसे ना हो सकता है कि कोई एक का भी फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क? कि शांति धाम में जावे और सुख धाम में ना आवे, सुख धाम में जावे और फिर दुख धाम में ना आवे। क्योंकि बाप आए तो भारतवासी जो स्वर्गवासी पहले पहले थे वो सब स्वर्गवासी बनेंगे, जो कि शांति धाम वासी बनने वाले हैं तो वो सब शांति धाम वासी बनेंगे, और वो अपना पार्ट बजाते रहेंगे। अध्याय 10 66 वाणी का 30 रुपये। तो बच्चों को क्या करना है, क्या करना है, है? जबकि बाप सन्मुख है, सन्मुख होते जाते हैं तो सुख धाम को शांति धाम को याद करना है, घर को याद करना है, नाटक पूरा होता है। जब नाटक पूरा होता है तो बाप को और घर को याद करना है, बाप को भी और
گھر کو بھی.
آتماؤں کے باپ کو بھی یاد کرنا ہے. اور باپ کہاں رہتے ہیں؟ ساکار میں رہتے ہیں. تو جو ساکار ہے وہ باپ کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی گھر ہے. اس لیے کہا ہی جاتا ہے برہما برہم لوک. اس شکتی پر ہے تو بھی برہم میں, اور شانتی دھام میں ہے تو بھی کہاں ہے؟ برہم لوک میں. تو باپ کو اور گھر کو دونوں کو, کیونکہ باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو تو تم گھر میں پہنچ جاؤ گے. سمجھے؟ گھر کے لیے ہی تو اتنے سب جو متھے مارتے ہیں نا, جو بھی سنیاسی وغیرہ ہیں وہ سبھی گھر کے لیے متھا مارتے ہیں. شانتی دھام جاوے من کو شانتی ملے. سنیاسی وغیرہ کوئی سکھ کے لیے متھا نہیں مارتے, کیونکہ سکھ کے لیے متھا مارنے کے لیے کوئی شکشا دانے شکشا دینے والا ہی نہیں. باقی شانتی دھام جانے کے لیے یہ سبھی سکھلاتے ہیں. سمجھا نا؟ سنیاسی لوگ سکھ کو نہیں مانتے ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ جو اصلی سکھ کی دنیا ہے سورگ, اس میں وہ آتے ہی نہیں ہیں. تو جس نے رسگلا کھایا ہوگا وہ رسگلے کو یاد کرے گا؟ جس نے کھایا ہی نہیں وہ یاد کیوں کرے گا؟ یہ سنیاسی لوگ سکھ کو نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں سورگ کے سکھ کاغ وستا سمان. اس لیے سب کو ایسے ہی بولتے ہیں کہ مکتی ٹھیک ہے, سکھ پانا ٹھیک نہیں ہے. سکھ تو ہے ہی نہیں اس دنیا میں. کیوں کہتے ہیں ایسے؟ کہ وہ سکھ کی دنیا میں آتے ہی نہیں ہے. کیونکہ شاستروں میں بھی ڈھیر دکھلائی دیا ہے کرشن کو, کہ کرشن کو بھی دکھ ہوتا ہے, کرشن کو بھی سانپ نے ڈسا تو کالا ہو گیا. چلو اوروں کو بھی ڈر, ان کے باپ کو کہ کوئی ان کو مار نہ ڈالے تو ان کو بھگا کر کے لے گئے. تو باپ تو ایسے ہی دکھلاتے ہیں. تو وہ تو سبھی بھکتی مارگ کا جھوٹ مارگ ہے. بھکتی مارگ کو کہا ہی جاتا ہے جھوٹ مارگ, کیونکہ جھوٹ کھنڈ جھوٹ مارگ, سچ کھنڈ تو سچ مارگ. تو سچا مارگ کون آ کر کے بتاتے ہیں؟ ایک ہی آتماؤں کا باپ ہے جو آ کر کے سچا راستہ بتاتے ہیں. باقی جو بھی منشی ماتر ہے, یہ جو بھی مکتی و جیون مکتی کے لیے بتاتے ہیں وہ دھندو دھری کی باتیں ہیں. पैसे कमाने की बातें हैं और बाप आकर के कोई धंधे धोरी की बातें थोड़ी बताते हैं। ये बातें तो है ही मुक्ति के लिए, वाह जीवन मुक्ति के लिए। ये जो मनुष्य मात्र मत्था मारते हैं, उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि हम क्यों इतनी यात्राएं करता हूं। चारों धाम के चक्कर लगाता हूं। वो बोलते हैं कि ये रास्ता है भगवान से मिलने के लिए, चारों धाम का चक्कर लगाना। अर्थात अगर वापस आत्मा के लोक में जाना है तो ये चक्कर काटना है, क्योंकि बाप तो घर में रहते हैं ना। बाप आकर के कहते हैं कि देखो तुम कितने बेसमझ बन गए हो, समझते हो कि चार धाम का चक्कर काटने से तुम घर में पहुंच जाएंगे। डेंडरों में चल बेसमझ हो गए ना, जैसे बरसाती मेंढक क्या करते हैं, फालतू ट्रा 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 करते ही रहते। अरे वो ट्रा ट्रा करने में उनको फायदा क्या होता है, ये भी उन मेंढकों की रस्म रिवाज है। तो ये भक्तों की भी रस्म रिवाज है, जांच बजाना, ये करना, यहां धक्का खाना, वहां धक्का खाना, पानी में डूब के लगाना। देखो भगवान से मिलने के लिए कितनी मेहनत करती रहती है, भला ये भक्त कितनी ये मेहनत करते हैं। तो जरूर कहेंगे कि भगवान से मिलने के लिए करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान के साथ मिलने के लिए। तो भगवान के साथ क्या भगत जाकर के मिलेंगे, जो इधर भागते हैं उधर भागते हैं, भागते ही रहते हैं, मंदिर में भागते हैं, मस्जिद में भागते हैं, गिरजाघर में भागते हैं, गुरुद्वारे में भागते हैं। ये भागने वाले भगवान से जाकर मिलते हैं क्या? तो आखिरीन भगवान को भी उनकी चाहना पूरी करने के लिए आना ही पड़े। हाँ भगवान तो जानते हैं कि ये पतित आत्माएं तो भगवान के घर जा ही नहीं सकती है। जो पतित आत्माएं हैं उनकी बुद्धि पतन में नीचे जावेगी या ऊपर जावेगी, नीचे ही जावेगी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि ऊंची स्टेज में ले जाने के लिए मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चे कभी भी वापस नहीं जा सकते हो सिवाय मेरे। मुझे कहते हैं सुप्रीम गाइड, यानी सुप्रीम पंडा। पंडा किसे कहते हैं? रास्ता दिखाने वाले को पंडा कहा जाता है ना। तो बड़े से बड़ा पंडा आत्माओं का बाप पंडयति अर्थात रास्ता बताता है, तो मुख से रास्ता बताएगा या बिना मुख के रास्ता बताएगा? मुख तो जरूर लेना पड़े। वो आकर के यहां इसको साफ करके, किसको? इसको जिसमें प्रवेश करते हैं, इसको शुद्ध करके सभी आत्माओं का एक गाइड बनता है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबका एक गाइड। यहां जाते हैं तो बहुत गाइड होते हैं, यात्रा करने जाते हैं तीर्थ स्थलों में तो एक गाइड होता है कि ढेर के ढेर गाइड होते हैं। ये रसम कहां से पड़ी? संगमयुग से रसम पड़ी। तो देखो ये पंडे कितने होते हैं, ये एक पंडा है, ये इतने पंडे नहीं है। चार चित्रों में ये पंडा कहां दिखाया गया है? कल्प वृक्ष में ऊपर एक ही पंडा बैठा है जो सभी आत्माओं को वापस परम धाम ले जा रहा है। तो देखो तुम भी पवित्र बनते हो तो तुम भी उस मुख्य पंडे के पिछाड़ी दौड़ते हो और सबको सिखलाते रहते हो कि पवित्र बनो तो साधन के साथ पिछाड़ी में चले जाएंगे और साथ चले जाएंगे। वो साधन ये आया हुआ है। तो देखो साधन भी कहा जाएगा ना, भी क्यों लगा दिया? और भी संबंध है या नहीं है? और भी सर्व संबंध है। तो वो साधन के रूप में आकर के सजनियों को श्रृंगारते हैं। कैसे श्रृंगारते हैं? ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। तुमको पटरानी महारानी बनाने के लिए श्रृंगारते हैं। तो गीता के लिए भी कहते हैं ना, कृष्ण भगवान उनके साथ सत्य भामा पटरानी थी ना, ये फलानी पटरानी जामवंती, इन पटरानियों को बगाया गायन है ना, जामवंती को बगाया, सत्यभामा को बगाया, और मुख्य कौन है? रुक्मणी को बगाया। तो देखो अभी सारी सृष्टि को कहो तो आधी सृष्टि को कहो तो भी आधा, या चौथा कहो माना। तीन पटरानियों के नाम बताए और एक महारानी बताई तो कितनी हुई? चार। महारानी एक ही राधा है, बाकी किसी को महारानी नहीं कहा, और पटरानी अनेक हैं। कहते आठ पटरानियां थी, तो जरूर वो आठ ही पट्ट में जाकर के गिरती है, महारानी नहीं गिरती। इसलिए एक महारानी और बाकी सब पट्ट रानी। तो देखो तुम सब पवित्र बनते हो तो उस मुख्य पंडे के पिछाड़ी दौड़ते हो, सबको सिखलाते रहते हो कि पवित्र बनो तो साजन के साथ पिछाड़ी में चले जाएंगे। तो देखो ये साजन आए हैं, साजन भी कहा जाएगा क्योंकि पटरानी महारानी बनाते हैं। तो ऐसे कह सकेंगे अभी नई दुनिया है, फिर वो नई दुनिया आज ही पुरानी होती है। अभी मुन्ना पुरानी हुई है मतलब 66 में शूटिंग पीरियड में, जब तक बाबा जीवित थे तब तक भी पुरानी सच्ची तो होती है ना। फिर बाबा शरीर छोड़ देते हैं तो आधी आधी पुरानी हो जाती। अभी सारी दुनिया पुरानी हो गई, उस पुरानी दुनिया में कोई हिसाब ही नहीं है। एक धर्म है कि अनेक धर्म है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, खास करके अब ये तो समझ जाते हैं अच्छी तरह से, बड़ी बड़ी बातें भी समझ जाते हैं, बेचारी बुढ़िया नहीं समझ पाती हैं। तो बुढ़ियों के लिए भी बाबा ने बड़ा सहज कर दिया कि बुढ़ी बच्ची अभी अपने बाप को आत्मा तो समझो ना, तुम भी आत्मा और बाप भी आत्मा। तो ये समझा करके बाबा ने बहुत सहज कर दिया कि मुझे याद करो, देह के ये सारी संबंध छोड़ करके अपन को आत्मा समझ करके मुझे याद करो तो तुम प्योर बन जाएंगे, दूसरे कोई को याद न करो तभी ऊंचा उड़ सकेंगे, नहीं तो उड़ ही नहीं सकेंगे। जब नहीं ऊपर उड़ सकेंगे तो क्या होगा है, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप परम धाम में तो सभी को जाना जरूर है, परंतु सजा खा करके जावेंगे तो क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। जितना याद करेंगे उतनी सजा कम होती जाएगी, और जितनी सजा कम होगी उतना तुम्हारा पद भी ऊंचा होता जाएगा। बस ये दो बातें याद कर लो। तीसरी बात बाबा कोई थोड़े ही बताते हैं, दो बात अला और बे, अलग माने अल्लाह जो सदैव खड़ा रहता है। उर्दू में पहला अक्षर है अलफ, खड़ा डंडा,
और वे परादंड। तो दो को याद करो। तीसरी बात कोई थोड़ी ही बताते हैं, अलग माने अल्लाह और अल्लाह की बात सही। ओम शांति।